यूके लंदन, डॉक्टर उषा किरण जी, शी इज एक्स प्रोफेसर हेड ऑफ कार्डियक एनेस्थेसिया डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्स. नॉट प्रेजेंटली शी इज वर्किंग एज अ प्रोफेसर हेड ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट सुपर स्पेशलिटी पीडियाट्रिक इंस्टीट्यूट ऑफ नोएडा यूपी. डॉक्टर विजय सिंगल जी, डॉक्टर हीना, शी इज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नवजीवन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ग्वालियर. डॉक्टर विजय सिंगल, डायरेक्टर एंड यूरोलॉजिस्ट, नवजीवन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ग्वालियर. ये आज के हमारे पैनलिस्ट एंड स्पीकर रहेंगे. एंड माई सेल्फ डॉक्टर अनिल भतीजा फ्रॉम जीएमईआरएस मेडिकल कॉलेज पाटन एज ए प्रोफेशन हेड ऑफ एनाटॉमी डिपार्टमेंट. जैसा कि आप देख ही रहे हैं, पैनल डिस्कशन ऑन डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप. आप सभी जानते हैं आज का समय कैसा गुजर रहा है, कितने सेंसिटिव इश्यू खड़े हो जाते हैं कभी कभी डॉक्टर्स के सामने, खासकर जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में भी काम करते हैं, कि कभी कभी ऐसी नौबत आ जाती है कि हाथापाई की नौबत आ जाती है, या फिर कुछ हमारे डॉक्टर्स के कुछ एक शब्द बोलने से भी कभी कभी ऐसा हो जाता है. तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करें, है ना? हमारे सामने सीनियर पैनलिस्ट बैठे हैं, हम उनसे एक एक करके इस इश्यू पर बात करेंगे कि इन्होंने भी जीवन में कभी ऐसी कंडीशन फेस की होंगी या करते होंगे डेली मरा में, जैसे पेशेंट से रिलेटेड है या एडमिनिस्ट्रेशन से है या हमारे स्टाफ से रिलेटेड इश्यूज होते हैं कई बार, तो उनको हम कैसे डील करें डे टू डे लाइफ में, तो उसके ऊपर हम आज डिस्कशन करेंगे. आई होप यू विल एंजॉय दिस डिस्कशन. सबसे पहले मैं हमारे डॉक्टर उषा किरण जी से, जो कि सीनियर मोस्ट पैनलिस्ट हैं, वैसे तो डॉक्टर अशोक मेहता जी हैं चेयरपर्सन हैं, पर अभी हम देखा जाए तो एक्स प्रोफेशन हेड ऑफ डिपार्टमेंट कार्डियक एनेस्थेसिया से रिटायर हुए हैं एम से. तो आपके सामने भी मैडम बहुत ऐसे इश्यू खड़े हुए होंगे, जैसे आप ओटी में काम कर रहे हैं और एनेस्थेसिया, एनेस्थेटिक पर्सन को तो कहा जाता है कि जब तक एनेस्थेसिया नहीं दिया जाएगा सर्जन भी लाचार हो जाते हैं क्योंकि सर्जन उसके सामने कुछ नहीं कर सकता जब तक एनेस्थेटिक एनेस्थेसिया नहीं देगा. तो कभी ऐसा इश्यू खड़ा हुआ है कि आपके सामने की पेशेंट ऑन द टेबल है और आप एनेस्थेसिया देने जा रहे हैं, कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेशन खड़ा हुआ हो और डॉक्टर कह रहे हैं ये क्या हुआ, आपने पहले प्री एनेस्थेटिक चेकअप क्यों नहीं किया जैसे एज यूजुअल होता है, तो उस समय आपने सिचुएशन को कैसे हैंडल किया है एज ए स्पिरिचुअल तौर पे या एक अपने फिजिकल तौर पे? आपसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा.
ओम शांति. आमतौर पे जो एनेस्थेटिस्ट के प्रति लोगों का व्यू होता है, जनता का, मतलब मेजॉरिटी ऑफ लोग तो एनेस्थीजिया स्पेशलिस्ट को जानते ही नहीं है, इज इट राइट? वो कभी पेशेंट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आते. ये उनके प्रोफेशन की गलती है या उनकी गलती है? ये मैंने रियलाइज किया जब मैं एम्स के अंदर आई और मेरे सामने सारे हार्ट पेशेंट्स, सारे बाईपास सर्जरी के लिए आते थे ऐसा, और वो एनेस्थेटिस्ट को देखते हैं टेबल के ऊपर जब वो ऑपरेशन टेबल में आ जाते हैं. तो ये गलत है ये कि ठीक है? एब्सोल्युटली रॉन्ग है. और अभी भी मैं देखती हूँ, मैं अभी भी वर्क कर रही हूँ आफ्टर माय रिटायरमेंट फ्रॉम कार्डियक एनेस्थीसिया फॉर 35 इयर्स ओवर देयर इन एम्स न्यू दिल्ली, और अभी मैं एक बच्चों के हॉस्पिटल में हूँ तो कंसल्टेंट कह देता है रेजिडेंट को, देख लिया हो गया पीएससी, और शायद अंदर एनेस्थीसिया कौन दे रहा है ये भी नहीं पता होता. एम आई राइट? कोई बैठे होंगे यहाँ एनेस्थीसिया और सर्जरी वाले? दिस इज एब्सोल्युटली अ रॉन्ग प्रैक्टिस. तो इसी को देखते हुए मैंने देखा कि अगर, क्योंकि मेरा स्पिरिचुअलिटी से बहुत कनेक्शन है और ये वाली बात, क्योंकि मैं पिछले ऑलमोस्ट 45 ईयर से ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हुई हूँ एंड आई ट्राई टू प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी इन माय एनेस्थीसिया स्पेशलिटी आल्सो, और उस स्पेशलिटी के अंदर जो मेरा अनुभव रहा है ना प्री एनेस्थीसिया चेकअप में, अगर हम थोड़ा सा पेशेंट्स को अपना वाइब्रेशन, हो सकता है हम बोल ना सके स्पिरिचुअल बातें पर बोल सकते हैं, 100% बता भी सकते हैं, और पता है क्या बताते हैं, आप सबको पता है क्या बताते हैं? देखो डेथ हो सकती है ऑन द टेबल, देखो किडनी जा सकती है ऑन द टेबल, ये क्या बातें बताने वाली होती है? और फिर लास्ट मोमेंट पे कंसेंट लिखवाते हैं, हम पेशेंट का स्ट्रेस दूर कर रहे हैं और वी आर गिविंग देम स्ट्रेस। और कभी कभी तो पेशेंट और रिलेशन के सामने बात हो रही होती है, पेशेंट भी सुन रहा होता है, और ऐसे वाले काफी अनुभव होते हैं। पर वहां पे फिर जब डेथ हो जाती है या कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है फिर बताने जाते हैं। तो जो हम कहते थे कि गॉड से नेक्स्ट इज डॉक्टर, तो इज दैट जस्टिफाइड? और मैंने बहुत सारे एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को कहते हुए देखे, क्या करें हमारा प्रोफेशन ये नहीं, प्रोफेशन ये नहीं है, हमने बनाया है ये प्रोफेशन। तो मैंने इसके ऊपर एक रिसर्च स्टार्ट किया था इसीलिए, और इस रिसर्च का ग्रांट दिया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बड़ा मेजर ग्रांट दिया था कि इफ द स्ट्रेस इज रिलीव्ड बिफोर द ऑपरेशन, यानी उसको पहले ही हम कुछ लेसन दे देते हैं, जो वन लेसन टू लेसन और योर ओन वाइब्रेशन, और टीच देम जस्ट पॉजिटिविटी। इतना ही कह दो कि आप अच्छा सोचोगे ना तो रिजल्ट पॉजिटिव हो, इतना तो कह सकते हैं, रिलेशन को भी इतना कह सकते हैं। तो उससे क्या होता है, उनके अंदर एक पॉजिटिविटी जागृत हो जाती है, तो बोले अच्छा सोचेंगे। तो मैंने एक बार पहले भी बताया था कि पेशेंट का हार्ट जो था 18% रिजेक्ट करता था, इजेक्शन फ्रैक्शन 18%, और उसने पूरे लेसन्स कर लिया, जबकि वो मेडिटेशन ग्रुप में नहीं आता था। हमारा तो 35% था इजेक्शन फ्रैक्शन जो हमारी स्टडी के अंदर था, पर वो बोलने लगा नहीं पेशेंट सारे ठीक हो रहे हैं तो आप मुझे भी सिखाइए। और यहां तक कि उनका हार्ट अरेस्ट हो गया था ड्यूरिंग सर्जरी, आफ्टर द सर्जरी पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में, और उसके बाद वो रिवाइव भी हो गए थे। और जब वो मुझे बाद में मिले तो कहने लगे कि आप लोग क्यों घबरा गए थे, इसको सोडा लाइम दो, इसको सोडा बाइकार्ब दो, इसको अब स्टीरॉयड्स दो, इसको ये दो, घबराने की क्या बात थी, यू ओनली सेड ना जैसा सोचोगे वैसा रिजल्ट आएगा। तो आई वॉज 100% श्योर कि मैं तो जीने वाला हूं, मेरे को कोई मार ही नहीं सकता, मैं सोच ही पॉजिटिव रहा हूं। तो सी दिस इज द इफेक्ट व्हेन वी गिव प्री एंग्जाइटी रिलीफ करते वक्त हम थोड़ा सा भी उन्हें पॉजिटिविटी सिखा दें तो रिजल्ट्स कैन बी ब्यूटीफुल। और कभी भी एनेस्थीसियोलॉजिस्ट किसी भी लीगल केस में या किसी प्रॉब्लम में फंस ही नहीं सकता, क्योंकि उसके हैंड्स में पेशेंट बड़ा सेफ होता है।
थैंक यू, बहुत अच्छा। देखिए आपने पॉजिटिविटी का कमाल देखिए कि कैसे, अगर डॉक्टर अगर पॉजिटिव है तो पेशेंट कभी कभी डॉक्टर को सिखाता है, अगर थोड़ा सा भी नेगेटिविटी आ गई या हशन गश में डिसीजन ले रहे हैं तो पेशेंट भी सिखाता है, भाई आप क्यों घबरा रहे हो, मैं अगर पॉजिटिव, मेरे को बता दिया कि मैं अगर ठीक हो जाऊंगा तो, जैसा कि बताया मैडम ने कि कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया। तो हम सभी डॉक्टर्स भी, स्पेशली जो एनेस्थेटिस्ट जो हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर में काम कर रहे हैं, कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो यही हमारा मोटो है आपको यहां बुलाने का कि इन एनी कंडीशन, कैसी भी कंडीशन हो, अगर हम पॉजिटिव रहें तो पॉजिटिव वाइब्रेशन जो चारों तरफ सर्कुलेट होते हैं वो पूरा आजू बाजू का जो एनवायरनमेंट को ही बदल देते हैं, चाहे ऑपरेशन थिएटर हो या फिर वार्ड का एनवायरनमेंट हो या फिर ओपीडी का एनवायरनमेंट हो। तो हर कंडीशन में अगर पॉजिटिव रहें तो मैं समझता हूं बहुत अच्छा हम कर सकते हैं। थैंक यू मैडम। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पैनलिस्ट हैं डॉक्टर ब्रिजेश सिंघल, जो कि किडनी ट्रांसप्लांट जो इनका हॉस्पिटल है रन करते हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं। इनके सामने भी बहुत ऐसी कंडीशन आती होंगी या आई होंगी कि आप ऑपरेशन थिएटर में काम कर रहे हैं, कभी ऐसा क्राइसिस आ गया है ना, बहुत अनटॉवर्ड क्राइसिस जिसको कह सकते हैं कि पेशेंट बहुत ज्यादा सीरियस हो गया ऑन द टेबल, या कभी कभी कुछ इमरजेंसी भी आ गई, या आप ओपीडी में पेशेंट को देखते हैं और बहुत सारे एकदम पेशेंट आ जाते हैं, वो कहते हैं भाई कोई वीआईपी पेशेंट आ गया इस बीच में उनको देखना है, या आपका नॉन पेशेंट है कोई, वो बोलता है मेरे को देखो पहले, जबकि आपके सामने पहले से लाइन लगी हुई है पेशेंट्स की, तो उस कंडीशन में आप कैसे मैनेज करते हैं उस सिचुएशन को?
थैंक यू अनिल भाई, ओम शांति। जैसा कि हम लास्ट दो दिन से सुनते आ रहे हैं, बोलने के लिए हम अक्सर बोलते हैं कि जब भी पेशेंट से कन्फ्रंट होते हैं ना, तो हम लोग एक भाषा इस्तेमाल करते हैं कि करने वाला तो भगवान है, हम तो वो कर रहे हैं, आप प्रार्थना करो, ऐसा हम अक्सर करते हैं। लेकिन वो हम बहुत ऊपर से करते हैं। इस चीज को यहां जुड़ने के बाद, ब्रह्मा कुमारी से जुड़ने के बाद लास्ट 14 ईयर से मैं उसको प्रैक्टिकली बिल्कुल उसको रियलिटी में कर रहा हूं। जैसे बोला ना आपने मैनेज कैसे करते हैं, तो एक्चुअली मैं तो कुछ मैनेज करता ही नहीं हूं। अक्सर आज सुबह ही कोई भाई मुझसे पूछ रहे थे कि आप ये चार चार दिन के लिए यहां आ जाते हो तो आपका हॉस्पिटल कौन मैनेज करता है। तो मैंने उनसे पूछा, अच्छा जब हम वहां होते हैं तब कौन मैनेज करता है? तब भी तो हम यही बोलते हैं कि वो मैनेज कर रहा है, हम सिर्फ एक निमित्त बने हुए हैं। तो इस निमित्त भाव को सिर्फ कहना नहीं है। अभी तक हम क्या करते आते हैं, हम सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं। हमें यहां पर जो सिखाया गया, एक बड़ी दिलचस्प बात सिखाई गई, आपको सुन के लगेगा कि भगवान को यूज करो। जनरली किसी को यूज करना बड़ा खराब माना जाता है, लेकिन यहां मुरली में बाबा हमको बोलते हैं कि आई एम योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट, मैं आपका सबसे आज्ञाकारी सेवक हूं। आपका कोई भी सेवक हो सकता है, आपका कहना ना माने, लेकिन भगवान हमेशा आपका कहना मानता है। तो इस बात को मैंने कभी हल्के में लिया ही नहीं कि भगवान कह रहा है मैं आपका आज्ञाकारी सेवक हूं। जब कह रहा है, खुद ऑफर कर रहा है और ये मौका मुझे मिला है, तो क्यों ना भगवान को यूज किया जाए। और मैंने हर बात में, हर चीज में अपने हॉस्पिटल में भगवान को यूज किया है। अगर हॉस्पिटल भी एक्चुअली, वो जब भी कोई पूछता है तो पहले तो मेरा हॉस्पिटल ही नहीं है। हॉस्पिटल किसका है? किसका है? जो मैनेज करता है उसका हॉस्पिटल है। हम लोग तो सिर्फ एक निमित्त इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं और हम सब वही काम करते हैं जो उसकी आज्ञा है। तो ये सब करते हुए हमारे यहाँ जैसे आपने बताया, कभी क्राउड हो जाता है, बहुत ज्यादा वीआईपी आ जाते हैं, तो इस हॉस्पिटल में एक मेडिटेशन रूम है। जो भी पेशेंट्स हमारे चैम्बर्स तक आते हैं, उससे पहले उनको उस मेडिटेशन रूम के आगे से निकलना होता है। पूरे हॉस्पिटल में ये स्लोगन्स, जैसे आप यहाँ हॉल में देख रहे हैं, ऐसे स्लोगन्स लगाए हुए हैं। तो उनको कुछ ना कुछ वहां उनका जो माइंड है ना, उसको बिजी रखना होता है। जनरली अगर वो फ्री बैठे हैं तो गपशप करेंगे, और गपशप में फिर आपको मालूम है कि आजकल वो क्या बातें करने वाले हैं। तो उनको कुछ ना कुछ एक थॉट दे दिया जाता है, और कुछ नहीं तो हमारे स्टाफ हैं, दिन में 2-3 बार वहां क्लासेस चलती हैं। तो जब भी कोई बैठे हुए होते हैं अटेंडर्स और पेशेंट वेटिंग में, तो उनको बुला करके वहां मुरली सुनाई जाती है, उनको बुला करके वहां ज्ञान सुनाया जाता है। तो कभी ऐसा कुछ ऐसे इंसिडेंट हुआ ही नहीं है अभी तक। वी आर रनिंग हॉस्पिटल सिंस 2002, तो ऐसा कोई कि कभी किसी को वेट करने की वजह से केओस हो। फिर कभी किसी को कोई जेन्युइन बात होती है तो उसको उसी टाइम एड्रेस कर दिया जाता है। तो सब कुछ मैनेजर पर छोड़ा हुआ है, और मैनेजर भी कैसा, बिना पैसे का। तो सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ा है।
बहुत खूब, देखा कैसे इन्होंने जवाब दिया, और कि निमित्त भाव है ना, जहां पर भी ये अपना काम कर रहे हैं, आपका पर्सनल प्राइवेट हॉस्पिटल है, पर आपका नहीं है, ये किसका है? उस परमात्मा का। कहते हैं ना, जिसने ही दिया हुआ है। भक्ति में भी कहते थे, आप भी, हम सब लोग कहते हैं, भाई ऊपर वाले ने दिया हुआ है, लेकिन मानते नहीं है हम, है ना, कहने तक रह जाता है। आज भी परमात्मा ने मुरली में कहा है हमें, है ना, कि आप बोलते हो, है ना, मेरा मेरा, तेरा तेरा बोलते हो, फिर मेरा मेरा कहने लगते हो। तो ये जस्ट हमें अपने लाइफ में जितना जितना हम इसको एक्सेप्ट करते जाते हैं, तो हमारी लाइफ इजी हो जाती है। जैसे बताया इन्होंने, मैं इसे पूछने ही वाला था कि ये, मैं इनको करीबन हर महीने यहाँ पे 4-5 दिन यहाँ पे देखता ही हूँ, है ना, कोई ना कोई। जैसे लास्ट मंथ भी हमारी एमबीएम की कॉन्फ्रेंस थी, इस बार भी एमबीएम की कॉन्फ्रेंस में आए हैं। तो ग्वालियर से आना और अपने हॉस्पिटल को थोड़ा साइड में रखना और फिर यहाँ पे सेवाएं देना, तो आप सोच सकते हैं कि पीछे कितने अपॉइंटमेंट्स होते होंगे, है ना, पेशेंट्स के। फिर भी ये मैनेज करके, मैनेज क्या, मैनेज तो परमात्मा ही करता है, पर फिर भी सम हाउ, है ना, कैसे भी मैनेज करके आते हैं, सेवा करके जाते हैं, और कभी इनको कोई दिक्कत नहीं आती है। तो बहुत ही अच्छा है कि अब हम भी अपने प्रोफेशन में, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में है या गवर्नमेंट सेक्टर में है, काम उसका है ना, मैनेजर वो है, वो करने वाला है। जैसे हेड ऑफ डिपार्टमेंट बोलते हैं ना, हेड ऑफ डिपार्टमेंट जस्ट हम लोग हेड ऑफ डिपार्टमेंट का चार्ज करते हैं, हम लोग काम करते हैं, पर असली हेड ऑफ डिपार्टमेंट तो वही है। तो हम भी अगर इस चीज को अपने जीवन में धारण करेंगे तो मैं समझता हूं बहुत आगे जा सकते हैं हम। अगले पैनलिस्ट जो है हमारी अनीता दीदी जी हैं, सीनियर राजयोग का टीचर हैं। अभी तक तो हमने बात किया था जो फिजिकल पेशेंट आते हैं डॉक्टर्स के पास, दीदी के पास भी बहुत से पेशेंट आते हैं, है ना। जैसे परमात्मा कहते हैं पूरी दुनिया ही पेशेंट है, किसी न किसी को बीमारी तो है, मन की बीमारी है, तन की नहीं है तो मन की तो बीमारी है। तो दीदी जी आपके पास भी ऐसे लोग आते होंगे कोर्स करने के लिए, है ना, राजयोगा का कोर्स, जो बहुत ही डिप्रेस होते होंगे, इरिटेटिंग होते होंगे, आप समझाते होंगे तो हो सकता है वो समझ नहीं पाते हो, है ना। तो कई बार ऐसे सिचुएशन हो जाती होगी कि अब क्या करें इसका, है ना, कैसे समझाएं। तो उस कंडीशन में आप कैसे उन पेशेंट्स को, है ना, समझाते हैं।
ओ शांति, दो हिस्से होते हैं किसी भी बात के, दो पक्ष होते हैं, एक फिजिकल एक इमोशनल। वो अपनी शिकायतें कर रहे होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स बता रहे होते हैं, दो चार लोग बाहर भी वेट कर रहे होते हैं, उनको 15 मिनट टाइम दिया है, वो 15 मिनट तो भूमिका बनाने में लगा देते हैं, और कोई समस्या सुनाने पे आता है तो उसको 2 घंटा भी कम होता। हम इसके लिए एक टेक्निक यूज करते हैं कि जैसे ही वो अपने वर्ड्स से हमारे से बात करने लगते हैं, हम उनके मन को शक्ति देने लगते हैं, उसके मस्तक पर आत्मा देखते हैं, परमात्मा से पवित्रता की किरणें दिलाते हैं। ऑलमोस्ट हमेशा ये रिजल्ट आता है कि उनकी बातें शॉर्ट होने लगती हैं, और अभी आधा भी नहीं बोला होता हमको समरी टच हो जाती है, हम उनको सॉल्यूशन सुनाने लगते हैं कि ऐसे प्रैक्टिस करना, ये करना, ये करना, ये करना। ज्यादातर बहुत संतुष्ट हो जाते हैं ज्यादातर, और कई बार हम उसे सॉल्यूशन नहीं सुनाते हैं, सिर्फ प्यार देते हैं, सिर्फ कहते हैं हम आपकी बात समझते हैं, बहुत परेशान हो अपना, पर मेरे को आपके लिए बहुत ख्याल आ रहा है कि मैं कैसे भी करके आपको खुश देखना चाहती हूँ, आपका प्रॉब्लम दूर करना। थोड़ा भी ऐसे सिंपैथी दो ना तो उतने से ठीक होने लगते हैं। थोड़ा प्रसाद खिलाते हैं, जी हमने अपने हाथ से बनाया, लो थोड़ा पानी पियो, तो चैन आता है। एक परिवार हमारे पास आया, 3 जने, और एक माता ज्ञान में चलती थी, उसके युगल थोड़ा बहुत आते थे, बेटी बहुत हाइपर, एकदम आउट ऑफ कंट्रोल, जैसे वॉयलेंट टाइप। तीनों आए, वेट कर रहे थे ऑफिस में, हम गए और उन्होंने बोलना शुरू किया माता ने कि अब इन दोनों ने फैसला कर लिया हम इकट्ठे नहीं रहेंगे, हम परिवार सारा बिखरना चाहते। मैंने कहा अच्छा क्या हुआ। बेटी ने बोलना शुरू किया पापा ऐसे करते ऐसे करते, हार्ट पेशेंट है फिर भी बैडमिंटन खेलते, ये। पापा ने बोलना शुरू किया बेटी इतनी खराब, ये इतने मोबाइल, इतना पैसा, इतना ये। मैंने उनकी बेटी को कहा बेटे तुम बहुत समझदार दिख रही हो मेरे को, और तुम्हारा आपके पापा से इतना प्यार है जो किसी बच्चे का नहीं देखा, इतनी केयरिंग। रोने लगी, हाँ प्यार तो बहुत है, इनको समझ नहीं आता। पापा को बोला इतना प्यार आपकी बेटी से, इसीलिए शायद आप चाहते हो कि उसका ये ठीक हो जाए, ज्यादा मोबाइल यूज नहीं करे वगैरह वगैरह। दोनों के अंदर एक दूसरे के प्यार की इमोशंस पैदा हो गए, वो लड़ने आए थे एक दूसरे का बता के, हमसे सिर्फ फैसला कराने आए थे कि अभी हम इकट्ठे नहीं रहेंगे। बेटी भागने लगी थी, स्टेशन तक जा चुकी थी, उसको पकड़ के लाए थे और फाइनली उन्होंने कमिट किया 1 महीना सिर्फ हम एक व्रत रखेंगे कि एक दूसरे को अप्रिशिएट करेंगे, एक दूसरे को जरा सा भी क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, और अब वो सारे ठीक है। तो ओम शांति।
बहुत 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 अच्छा देखा कि कैसे इनके पास भी ऐसे केसेस आते हैं जो आपस में कुछ मनमुटाव हो जाता है, फैमिली को डिस्प्यूट होता है, तो उनको कैसे राजयोग के द्वारा या जो ज्ञान की शक्ति है, योग की शक्ति है, उसके द्वारा उनको समझा कर, है ना, देखिए अलग अलग होने आया था वो परिवार, टूट रहा था एकदम, उसको कैसे जोड़ दिया। तो जोड़ने का एक ही तरीका है, लव, है ना, प्रेम। कहते ना, प्रेम से अगर बात करें किसी से तो नाराज बंदा भी खुश हो जाता है और हमारे नजदीक हो जाता है, है ना। रिसर्च भी हुई है कि जैसे एनिमल है, एनिमल को भी केवल आप खूंखार शेर को भी केवल हाथ लगाओ ना अच्छी तरह से, तो वो भी कंट्रोल में आ जाता है। जैसे आपने देखे होंगे कई वीडियोस फॉरेन के, मैंने देखे हैं, लोग वहां पर तो शेर से खेलते हैं, तो क्या होती है उनके अंदर एक प्रेम के जो वाइब्रेशन निकलते हैं उनके साथ, उनके खेलते हैं, तो मैं समझता हूँ वो बहुत ही अच्छी तरह से उनके साथ घुल मिल जाते हैं। तो हम तो इंसान है, है ना, तो प्रेम से अगर बात करें, अच्छी तरह से उन्हें समझाएं, आपके सामने भी ऐसे आते होंगे पेशेंट, तो उन्हें भी अच्छी तरह से, ना, जैसे साइकेट्रिक डॉक्टर्स होते हैं उनके सामने भी ऐसे केसेस आते होंगे, तो ये अगर राजयोग की विधि अगर सीख जाएं तो आप अपने प्रोफेशन में बहुत आगे जा सकते हैं, कई टूटते परिवारों को हम बचा सकते हैं, यही है राजयोग की शक्ति। अब मैं आगे डिस्कशन को बढ़ाते हुए, हमारे सामने डॉक्टर रे भट्ट जी बैठे हैं, ही इज फ्रॉम लंडन यूके, मेटाबॉलिक न्यूरोफिजिशियन, है ना। सर, एनी केस केम इन फ्रंट ऑफ यू विच इज वेरी वेरी डिप्रेस, है ना, बहुत ज्यादा मायूस हो गया हो और आपने उसको कंसोल किया हो फिजिकल तौर पे भी, फिजिकली कोई बीमारी हुई हो, तो उस कंडीशन में आपने उसको कैसे हैंडल किया हो इस सिचुएशन को, एनी एक्सपीरियंस इन योर लाइफ, सो प्लीज शेयर।
ओम शांति। मुझे सुनाई नहीं पड़ता? ओम शांति, एक बारी फिर से, ओम शांति। अभी कान खोलकर सुन लो, पूरा पूरा राइट लेफ्ट दोनों कान खोलकर बैठो। दादी हमेशा मैं कहती थी, कुछ भी कहना है तो पहले पूछ लो सुन रहे हो, कान खोलकर। अच्छा, डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप की एक बात है, डॉक्टर डॉक्टर रिलेशनशिप क्या बात है? मोस्ट डिफिकल्ट केसेस होते हैं जब पेशेंट एक अकेला नहीं है, पर सारा ब्रह्म कुमारी का आश्रम वर्ल्ड वाइड, उनके सारे रिलेशंस, तो एक ही पेशेंट नहीं है, मिलियंस में आते हैं। मैं स्पेन में था, छुट्टी पर गया था, तो टेलीफोन आया, आपको जल्दी जल्दी वापस लौटना है, लंदन नहीं, बर्मिंगम, और बर्मिंगम के आगे एक छोटा सा गांव है स्टोक ऑन ट्रेंट। भाई क्या प्रॉब्लम है? भाई वो लोग ने कह दिया डॉक्टर लास्ट स्टेज पर है। वो था 30 साल का एनेस्थेटिस्ट, नेशनल हेल्थ सर्विस में काम किया था उसने, लंदन में बाईपास हो चुका था सेंट जॉर्जेस में, फिर मिडलैंड्स में दोबारा बाईपास किया, और उनको कहा गया कि अभी तो खलास है, अभी कुछ नहीं हो सकता। तो मुझे फोन आया, आप इनको आकर देखो। मैं आया, पहुंचा, कंसल्टेंट्स को बुलाया, भाई क्या बात है? पेशेंट वॉज टॉक्सिक, गाउट था, डायबिटीज था, हाइपरवेंटिलेट कर रहा था और बोल रहा था केजीबी और सीआईए मेरे पीछे है। ही वॉज कंप्लीटली डिलूडेड। कंसल्टेंट को हमने पूछा, तुम क्या कर रहे हो, ट्रीटमेंट क्या कर रहे हो? गाउट की, डायबिटीज की, ये सब ट्रीटमेंट चल रही है, कॉम्प्लिकेशंस है, पर तुम्हारा प्लान क्या है आखिर में, ये तो बताओ, मैनेजमेंट का प्लान क्या है? तो बोलते हम कुछ नहीं मैनेज कर सकते, ये तो गॉन केस है। तुमने बोला चेस्ट की कंडीशन कैसी है, जहां बाईपास हुआ है वो वेसल्स खुले क्या है नहीं है। बोलता कोई जरूरत नहीं है, अभी तो गया है। मैंने एग्जामिन किया, न्यूरो तो एग्जामिन हो ही नहीं सकता कि कोई वो स्टेक्स, टेम्परेचर था, सब कुछ था। सीनियर कंसल्टेंट को मैंने पूछा आपकी स्ट्रेटजी क्या है, ट्रीटमेंट को छोड़ो पर स्ट्रेटजी क्या है। ये सीनियर एनेस्थेटिस्ट है, 30 साल से सर्विस दे रहा है, आप उसको ट्रीट कर रहे हो पर आपकी स्ट्रेटजी क्या है, नहीं बता पाया। तुरंत ही मैंने लंदन मगदी याकूब को टेलीफोन किया, आपने सुना होगा नाम मगदी याकूब। मैंने बोला मगदी हेलीकॉप्टर भेज, यहां से पेशेंट को ले जा सीधा ही लंदन। हेयरफील्ड में उनको लेकर आए, एग्जामिन किया, तब पता चला कि हार्ट इतना बड़ा था, तकरीबन हाफ तो थोरैक्स का हार्ट, और पेरिकार्डियम और हार्ट के अंदर तकरीबन 1 लीटर पस भरा हुआ था, तो उसको तो टॉक्सिक होना ही है। इमरजेंसी सर्जरी से सब कुछ निकालकर उसको पंप पर लगाया, और फॉर्चुनेटली मैं जहां से आया था स्पेन से, वहां से टेलीफोन आया एक एक्सीडेंट हुआ है, 25 साल का लड़का मर गया है, हार्ट अवेलेबल है। शॉर्ट में हार्ट आ गया, ट्रांसप्लांट हुआ। वो मरीज, वो डॉक्टर 25 साल जिया। मगदी का लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग पेशेंट। क्यों जिया? सारी मेटाबॉलिक जो काम करने की थी वो हम मगदी के साथ हमेशा ब्रॉम्पटन हॉस्पिटल में, मैं चेल्सी वेस्टमिंस्टर में था, वहां कर सकती। तो मगदी जो कर पाया वो सारी नेशनल हेल्थ सर्विस न कर पाई। अच्छा, ये हो गया मगदी का। दादी जानकी का केस आया सामने, कहते हैं ना 5 कोरोनरीज है, दादी के अंदर 8 कोरोनरीज थी, एक भी खुली नहीं थी। उनका ब्लड प्रेशर 220 और 260 के बीच में रहता था, एस्पिरिन की सेंसिटिविटी थी, अस्थमा था, पेट में दर्द था, शोल्डर में दर्द था, बैक में, कमर में दर्द था। क्या करेंगे? एनेस्थेटिस्ट कोई तैयार नहीं था। किरण बहन, मैं लंदन में सब जगह घूमा, सब जगह नॉक किया, भाई एनेस्थेटिस्ट चाहिए, कौन देगा एनेस्थीसिया कार्डियोलॉजिस्ट के लिए? कोई नहीं था। कार्डियोलॉजिस्ट को कहा देखो इनको एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं है, वो आप करो एनेस्थीसिया के बगैर। वो बोलता हम दोनों जेल में जाएंगे अगर मैंने किया। मैंने बोला देखो ये है बीटा से डेल्टा में जा सकती है, उसको पेन क्या है मालूम नहीं पड़ेगा, तुम करो ना। बोलता अच्छा मैं करता हूं। शुरू किया, उसने कागज देखा, दादी ने साइन नहीं किया था। बोलता इनको जगाओ जगाओ, ये साइन करे। अरे ये तो डेल्टा में है, इसको कौन जगाएगा, कैसे जगाएगा? बोलता तुम्हें जगाना ही पड़ेगा, साइन नहीं करेगी तो मैं नहीं करूंगा। कान में दादी को पूछा, दादी उठो ना, प्लीज उठो, साइन करो। पांव हिलाया, ये कराया, उसको बोला भाई ट्रम्पेट लेकर आओ, इनके कान में ट्रम्पेट लगाना पड़ेगा कि उठे। फिर अचानक उठी, तुम क्या मर गया है? मुझे बोलती है तुम मर गया है, मेरे लिए साइन नहीं कर सकता। बाप रे, साइन कर दी मैंने, गई वापस, एक आर्टरी खोल दी सर्कमफ्लेक्स, वो हुआ। फिर हम गए एनेस्थेटिस्ट के पास, देखो सर्कुलेशन हो गया, अभी तुम इनको बेहोशी दो तो आगे काम बढ़े। टूक में कार्डियोलॉजिस्ट ने 3 आर्टरी खोल दी, बहुत दवाइयां देनी पड़ी, बीटा ब्लॉकर, अल्फा ब्लॉकर, कॉम्बिनेशन, ये वो, हेमरेज तो होने वाला था ऊपर अगर 270 पर पहुंच गया, एस्पिरिन भी बंद थी फॉर्चुनेटली, एनेस्थेटिस्ट घबरा रहा था कि कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए, कहीं ब्रेन हेमरेज ना हो जाए, कहीं अस्थमा का रियल अटैक ना आ जाए। अच्छा ये हुआ, तीन आर्टरीज खुल गई, तो वो पेट का दर्द था, उसके लिए सर्जन चाहिए। सर्जन के पास गए, रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन, सीनियर सर्जन जिसने की होल सर्जरी शुरू की थी, डेविड रोजिन। डेविड को कहा भाई एक छोटी सी बच्ची है, थोड़ा गॉल ब्लैडर बड़ा हो गया है, मुट्ठी के जितना है, तुम 5 मिनट में कर सकता है। बोलता ले आओ ले आओ। दादी को देखा तो मुझे कहा क्या मुझे पागल समझते हो, ये छोटी लड़की है, ये तो 80-90 साल की है। मैंने बोला छोटी है, 4 फुट 2 इंच है। डेविड ने बहुत बहुत प्यार से शुरू किया काम। नॉर्मली गॉल ब्लैडर आप जानते हो किरण बेन, 20 मिनट मैक्सिमम। हाँ, अल्ट्रासाउंड किया, गॉल ब्लैडर रग्बी फुटबॉल जितना, पैंक्रियास में लीक हुई थी तो पैंक्रियास इन्फ्लेमेशन शुरू हो गया था, ड्यूओडेनल डाइवर्टिकुलम था, कॉलोनिक डाइवर्टिकुले थे। अभी क्या करेगा वो सर्जन, धीरे धीरे 4 घंटे के बाद पूरा हुआ। 5 घंटा हुआ, क्या हुआ, दादी उठ खड़ी, मैं तो घर जा रही हूं, थैंक यू। कभी सुना है, कभी सुना है 4 घंटे के बाद लेजर सर्जरी पेशेंट उठ खड़े और कहे मैं जा रही हूं घर? मैंने पांव पकड़ा, दादी ये नहीं हो सकता, यहां ही रहना है, सर्जन को लेकर आओ मेरे पास, कार्डियोलॉजिस्ट को लेकर आओ मेरे पास, एनेस्थेटिस्ट को लेकर आओ मेरे पास। सचमुच ही बाबा भवन में सभी बहनों को बिठाया, अपनी वीडियो लगाई, देखो देखो दादी जल रही है, शी वॉज ऑन फायर, लेजर सर्जरी। वो बहने सब घबरा गई कि ये तो दादी जाने वाली है, फायर फायर फायर, और दादी हंसती थी। 6 घंटा ऑपरेशन के बाद कॉरोनरी एंजियोग्राफी, गॉल ब्लैडर सर्जरी, कभी भी सुना है आपने? नहीं सुना होगा। तो ये पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप, डॉक्टर डॉक्टर रिलेशनशिप, जो कॉम्प्लिकेशंस आती है, साइन करनी होती है, तुम क्या समझते हो किसका काम है ये? उसके बगैर हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है।
ओम शांति। बहुत अच्छा इन्होंने एक्सपीरियंस, हमने भी पहली बार सुना शायद, है ना ब्रिजेश भाई, शायद आपने सुना है क्या? पहली बार मैंने सुना है कि दादी जी को इतने 5 ब्लॉकेजेस है, 5 आर्टरीज जगह जगह, उसके बाद इतना विदाउट एनेस्थेसिया, यानी ऑपरेशन करना दिया होगा, है ना, उसके बाद फिर गॉल ब्लैडर सर्जरी, है ना। इट्स एन मिरेकल ऑफ राजयोग आप कह सकते हैं, कि राजयोग के द्वारा कैसे, जैसे आपको बताया था पहले भी लेक्चर्स में, कि दादी को डेल्टा वुमन की पदवी दी गई है, कि यानी वो उठते बैठते कोई भी कैलकुलेशन करके उनके जो ब्रेन में से ईईजी वेव्स निकलते हैं, हमेशा डेल्टा वेव्स ही निकलते थे, जो कि नॉर्मल इंसान में, हमारे और आपके में, केवल डीप स्लीप में, डीपेस्ट स्टेज ऑफ स्लीप में डेल्टा वेव्स निकलते, बाकी कहीं पर भी डेल्टा वेव्स नहीं निकलते। तो आप सोच सकते हैं इस राजयोग के द्वारा कितना हमारा मन शांत हो जाता है। आप काम वही कर रहे हैं, चाहे आप हॉस्पिटल में ऑपरेशन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, पर आपका मन इतना शांत रहेगा कि वही काम को आप एक्यूरेटली कर सकते हैं। जैसे कि इन्होंने बताया कि इन्होंने, देखिए ये भी राजयोगा का अभ्यास इतने सालों से कर रहे हैं, कि कहते इन्होंने कैसे क्विक डिसीजन लिया कि वहां से मगधी को फोन किया कि भाई जल्दी एयरलिफ्ट करो पेशेंट को, जो पहले पेशेंट का इन्होंने एग्जाम्पल दिया, एनेस्थेटिक 30 ईयर्स का था, कि डायग्नोस किया कि हार्ट इतना बड़ा हो गया था, इमीडिएटली उसका पस रिमूव किया। तो दिस डिपेंड्स अपॉन अवर डिसीजन पावर, है ना, कितना हम एक्यूरेटली डिसीजन लेते हैं पेशेंट के लिए और पेशेंट को हम बचा सकते हैं। तो डेफिनेटली परमात्मा क्रेडिट आपको ही देगा, काम उसका है पर क्रेडिट आपको जाने वाला है। थैंक यू भाई साहब।
भूल गई, जब वो तीनों आए दादी के पास बाबा भवन में, कार्डियोलॉजिस्ट को कहा रिजाइन हो जाओ, सर्जन को कहा रिजाइन हो जाओ, अभी एनेस्थेटिस्ट को क्या कहा मैं नहीं बताऊंगा। कार्डियोलॉजिस्ट था फादर ऑफ स्टेंट, उल्रिक सिगवार्ड, उसको ब्रॉम्पटन हॉस्पिटल में से रिजाइन करवाया, कहा जिनेवा जाकर कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट शुरू करो, सारे वर्ल्ड के कार्डियोलॉजिस्ट को सिखाओ तुम्हारा काम। असल में दादी जानकी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी यूनिट इन जिनेवा। डेविड रोजिन को कहा रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन छोड़ दो, सेंट मेरीज छोड़ दो, जाओ वेस्ट इंडीज में। अरे वेस्ट इंडीज में जाकर क्या करेगा, वो घबरा गया कि ये क्या कह रही है मुझे, रिजाइन हो गया। बाबेडोस जाकर नई इंस्टीट्यूट खोली एंड ही स्टार्टेड कैंसर सर्जरी फॉर द फर्स्ट टाइम इन वेस्ट इंडियन आइलैंड्स।
थैंक यू भाई साहब। हमारे बीच में चेयरपर्सन है डॉक्टर अशोक मेहता जी, आप सभी जानते हैं, है ना। मैं भाई साहब आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि आप भी सर्जिकल लाइन में हैं इतने सालों से, और आपके सामने भी कई ऐसे पेशेंट होते हैं या स्टाफ ऐसे होता है जो बहुत इरिटेटिंग होता है ना, काम नहीं करता है, या टाइम पे आपको जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो इंस्ट्रूमेंट न देना, या जो भी ऐसे हो सकता है कई बार, तो उस कंडीशन में आप कैसे सिचुएशन को हैंडल किया है अपने आप को शांत रख के, वो हमारे डॉक्टर्स को बताएं।
ओम शांति, ओम शांति। मैं हमारी बंबई की BSES म्यूनिसिपल जनरल अस्पताल जो ब्रह्मा कुमारीज चलाती थी उसका डायरेक्टर था 18 साल बंबई में। हमारे सामने अनेक प्रॉब्लम्स आते थे। भाई साहब ने पूछा कि आप स्टाफ के लिए क्या करते थे, स्टाफ से प्रॉब्लम होता तो क्या करते थे। हमारा एक अप्रोच था, हम हमारी जानकी फाउंडेशन है जिसका एक प्रोग्राम है जिसका नाम है वैल्यूज इन हेल्थ केयर स्पिरिचुअल अप्रोच। दिस इज मेनली टू प्रिवेंट द बर्नआउट अमंगस्ट द हेल्थ प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, नर्सिस, जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनके अंदर उनका जो बर्नआउट होता है या नेगेटिव होते हैं उसको कम करने के लिए, डिप्रेशन में जाते हैं, कई सुसाइड भी करते हैं, तो ऐसे लोगों को कैसे मदद की जाए, उसके लिए जब जानकी दादी की आपने बात सुनी, उन्होंने वहां लंदन के अंदर एक जानकी फाउंडेशन बनाया था यहाँ की ग्लोबल अस्पताल को सपोर्ट करने के लिए फाइनेंशियली। और उस फाउंडेशन ने एक दूसरा अच्छा काम किया था कि वैल्यूज इन हेल्थ केयर का प्रोग्राम बनाया था, तो इस प्रोग्राम से प्रोफेशनल्स को और जो भी स्टाफ था, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, उनको काफी मदद मिलती थी। ये प्रोग्राम को फैसिलिटेटेड एक्सपीरियंशियल प्रोग्राम कहा जाता था कि आपको अनुभव होना चाहिए वैल्यूज स्वयं में कैसे वापरने। एक्चुअली उसका फर्स्ट प्रिंसिपल था डॉक्टर हील थाइसेल्फ। हम जो डॉक्टर्स हैं, आप सब, हम काफी चैलेंजेस फेस करते हैं प्रोफेशन के अंदर, चाहे आप जनरल प्रैक्टिस में हो, चाहे आप हाईली स्किल्ड एरियाज में हो, कोई भी सर्जन, फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन, कुछ भी स्पेशलिटी में हो, तो आपके सामने चैलेंजेस तो आने वाली है, प्रोफेशनल चैलेंजेस आने वाली है, फाइनेंशियल चैलेंजेस आने वाली है, फैमिली की पर्सनल लाइफ के अंदर चैलेंजेस आने वाली है, तो इस सबको कैसे हैंडल करें। तो ये जो वैल्यूज का प्रोग्राम है उसके अंदर हम 8 वैल्यूज सिखाते हैं, फैसिलिटेटेड एक्सपीरियंशियल लर्निंग। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे हम सबको अनुभव होता है हमारा जीवन के अंदर कि कोई भी प्रॉब्लम आया तो हम कैसे हैंडल करते हैं, फिर हमारा स्पिरिचुअल वे क्या होना चाहिए, तो हम 8 वैल्यूज के बारे में बात करते हैं। पहले तो वैल्यूज क्या है, वैल्यूज डिफाइंड पर्पज ऑफ आवर लाइफ। हम जब डॉक्टर बने तो हम क्यों बने, एक तो एज अ प्रोफेशन आपको अट्रैक्ट किया क्योंकि आप अनेक लोगों को जो बीमार है, जो डिस्ट्रेस में है, उनको मदद कर सकते हैं। दूसरा इट्स गुड रिवॉर्ड, रिवॉर्डिंग प्रोफेशन, और जीवन के अंदर यदि अच्छा काम करना है, डॉक्टर का काम सबसे अच्छा है, फ्रॉम द ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू. तो ये जो वैल्यूज हम लेके चलते हैं उसके अंदर कौन सी वैल्यूज का ज्यादा मदद करती है, तो हम मानते हैं कि पॉजिटिविटी, जैसे सब डॉक्टर्स ने बताया कि ब्रह्मा कुमारी इसको आपको डिस्क्राइब करना है तो स्कूल ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, हर चीज में कल्याण देखना, किस तरह से कल्याण करना यहां सिखाया जाता है. तो पॉजिटिविटी एज अ वैल्यू, उसको पूरा 8 घंटे का प्रोग्राम होता है, उसके अंदर 8 से 10 एक्सरसाइज होती है और एक फैसिलिटेटेड कहा जाता है. फैसिलिटेटेड मैंने क्या, एक जो फैसिलिटेटर होता है और एक कोऑर्डिनेटर होता है. तो फैसिलिटेटर मेक्स इट इजी फॉर यू टू लर्न, तो उसके एक्सरसाइजेस तैयार होती है. तो वो एक्सरसाइज हम देते हैं, जैसे पॉजिटिविटी के अंदर आप कहेंगे कि आप पॉजिटिव वैल्यू आप किस तरह से आपके जीवन के अंदर वापरेंगे, तो आपका जो अनुभव होता है वो आप स्वयं में रिफ्लेक्ट करेंगे. रिफ्लेक्शन मैंने अंदर हमारा अनुभव, हमारे अंदर जो है उसका हम चिंतन करते हैं, हमको याद आता है कि हमने पॉजिटिवली कौन सी चीज अच्छी की थी, पॉजिटिविटी हमने कौन से पेशेंट अच्छे किए थे, या पॉजिटिविटी का रोल क्या है मेरे जीवन के अंदर. सिमिलरली जैसे वो फिर ये मेरा चिंतन, मेरे साथ में जो दूसरा पार्टनर होता है, ये 8 लगभग 15 से 20 का ग्रुप होता है और आपको पार्टनर से साथ में काम करने का होता है. तो यू शेयर योर एक्सपीरियंसेस विद अनदर डॉक्टर, ही विल टेल यू हिज एक्सपीरियंस, यू विल शेयर योर एक्सपीरियंस विद हिम, एंड देन यू कम टू अ कॉमन कंक्लूजन हाउ पॉजिटिविटी हेल्प्स इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. सो इस तरह से इसको फैसिलिटेटेड एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहा जाता है. इस तरह से हम 8 वैल्यूज से, पॉजिटिविटी पहले तो वैल्यूज, पॉजिटिविटी, पीस, क्या आप पीसफुल होंगे तो किस तरह से आपका जॉब अच्छा होता है, पीस का अनुभव आपको किस तरह से हो सकता है. तो थर्ड वैल्यू इज कंपैशन, चौथा है कोऑपरेशन, पांचवा इज सेल्फ केयर, आप आपके स्वयं की कैसे संभाल रखेंगे, स्पिरिचुअलिटी इन हेल्थ केयर और रिजिलियंस. ये जो 8 वैल्यूज है उसके ऊपर एक एक दिन का पूरा प्रोग्राम होता है. आजकल क्या होता है कि जब कोविड चल रहा था तो फिजिकली प्रोग्राम नहीं होता था, तो हम लोग ऑनलाइन प्रोग्राम करते थे. तो 2 घंटे के अंदर 3 या 4 एक्सरसाइज करते थे और दूसरे दिन 2 और 3 घंटे में बाकी के एक्सरसाइज करते थे. इससे ये जो वैल्यूज इन हेल्थ केयर का प्रोग्राम है, ये मेनली टू ब्रिंग द हायर वैल्यूज इन योर लाइफ. जो और इसके वजह से आपका जो बर्नआउट होता है, जो मेंटल डिप्रेशन होता है, ये सब कम हो जाता है. तो मैं समझता हूँ ये जो वैल्यूज इन हेल्थ केयर प्रोग्राम है ये काफी मदद करता था हमारे अस्पताल में. बहन हमारे साथ में बैठी है, डॉक्टर हीना, उस समय यंग रेजिडेंट थी. ये प्रोग्राम हम लोगों ने 2006 में चालू किया था भारत के अंदर. एक्चुअली 2005 में हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था अस्पताल के अंदर और 2004 में ये वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस हुआ था लंदन के अंदर. और उस प्रोग्राम के द्वारा हमने देखा कि डॉक्टर्स को आपस में बहुत अच्छा लगा, हार्मोनियस रिलेशनशिप ये बहुत जरूरी था. तो एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ था या मेडिकल स्टाफ था या नर्सिंग स्टाफ था और डॉक्टर्स कंसल्टेंट्स, ये सब के अंदर आपस में बहुत हार्मोनियस रिलेशनशिप हुई. इससे अस्पताल को भी फायदा होता है क्योंकि पीपल वर्क मोर विथ मोर डेडिकेशन, मोर पीसफुली, योर मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आर, यू नो, पीपल अंडरस्टैंड ईच अदर मच बेटर. सो मैं समझता हूँ और प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है. तो ये जो वैल्यूज इन हेल्थ केयर प्रोग्राम है ये एक बहुत अनूठा प्रयोग था. वी आर इंट्रोड्यूसिंग दिस प्रोग्राम अक्रॉस द कंट्री एट द मोमेंट. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 40 देशों के अंदर ये प्रोग्राम चल रहा है. मैं टीम के साथ गया था फिलीपींस के अंदर और चाइना में. चाइना के अंदर उनका जो चाइनीज मेडिकल एसोसिएशन था, इन्होंने ये प्रोग्राम को अच्छी तरह से एडॉप्ट करने का डिसीजन लिया था. आगे क्या हुआ, क्योंकि वैल्यूज को चाइनीज में ट्रांसलेट भी किया था, तो ये इस तरह से मैं समझता हूं कि ब्रह्मा कुमारीज का जानकी फाउंडेशन ने वैल्यूज इन हेल्थ केयर अ स्पिरिचुअल अप्रोच अ फैसिलिटेटेड एक्सपीरियंशियल प्रोग्राम सबको इंट्रोड्यूस करके काफी रीत में वैल्यूज की वैल्यू, प्रोफेशनल वैल्यूज क्या है बताया है. तो ये बहुत जरूरी है कि यदि आपको रिलेशनशिप इम्प्रूव करनी है, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करनी है, एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्रूव करना है, प्रॉफिटेबिलिटी इम्प्रूव करनी है, तो वैल्यूज इन हेल्थ केयर प्रोग्राम एडॉप्ट करना बहुत जरूरी है. थैंक यू.
थैंक यू भाई साहब. आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में कैसे हम अपने जो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप है या डॉक्टर डॉक्टर रिलेशनशिप है या हॉस्पिटल में डिफरेंट स्टाफ के साथ रिलेशनशिप कैसे बना के रखना है, उसको कैसे वैल्यूज के थ्रू हम अपना रिलेशनशिप को अच्छा मजबूत बना सकते हैं, उसके लिए भाई साहब ने व्यासा के बारे में पूरा डिटेल में बताया. वैसे कल व्यासा के आपका एक सेशन है शाम को, एक वैल्यूज के ऊपर आपकी एक्सरसाइज कराई जाएगी. आई होप यू विल एंजॉय टुमारो. जैसा बताया कि व्यासा मोर देन 40 कंट्रीज में रन होता है और इंडिया में भी 2006 में यहाँ पे सर ने लॉन्च किया था, 2004 में यूके लंदन में पास हुआ. तो आप भी इस व्यासा को अगर करेंगे, जैसे डॉक्टर ब्रिजेश सेन अपने हॉस्पिटल में व्यासा को अप्लाई करते हैं, कि व्यासा को अगर अप्लाई करने के बाद हम अपने स्टाफ के बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखें और पेशेंट्स के ऊपर एक फेथ, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन बना के रखते हैं, तो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप अपने आप ही अच्छे हो जाते हैं. उसको अच्छा करने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि वैल्यूज अगर हमारे अंदर है, वो वैल्यूज हमारे कर्म से रिफ्लेक्ट होती है. हम कहें नहीं मैं तो बहुत प्यार से बोलता हूं, लेकिन अगर हमारे मुंह में कड़वाहट होगी तो कौन कहेगा आप प्यार से बोलते हैं. तो ये चीजें हैं जो हमें अडॉप्ट करनी होती हैं और एक्सपीरियंस से आती हैं, काम करने से ही आती हैं. अच्छा, टाइम को आगे बढ़ रहा है. मैं अभी डॉक्टर हिना से पूछूंगा कि आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं नवजीवन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के, तो आपके सामने भी ऐसे कई इंसिडेंट्स आते होंगे कि आप बाहर काउंटर पे हैं और ओपीडी में बहुत भीड़ है और आपको एक एक को अंदर भेजना है, और कई बार क्या है कि पेशेंट एडमिट है, बिलिंग की प्रॉब्लम होती है. सबसे बड़ा इश्यू होता है प्राइवेट हॉस्पिटल में, बिलिंग का इश्यू होता है, कई बार ऐसा हो जाता है. तो आप ऐसे कंडीशन में उसको कैसे हैंडल करते हैं?
ओम शांति. तो सबसे पहले अगर ओपीडी एरियाज में या कहीं पर रिसेप्शन पे बहुत सारा क्राउड है, तो जैसे होता है ना, कहीं पर भी थोड़ा क्राउड ज्यादा है और हवलदार आता है तो लोग पीछे हट जाते हैं. तो ये भी एक जो बाबा ने हमको यूनिफॉर्म दिया है और बैज दिया है, तो मैं हवलदार जैसे ही हूँ आप समझ लीजिए. जैसे ही मैं जाती हूँ वो शांत हो जाते हैं अपने आप और पीछे हट जाते हैं, तो मुझे लगता है हवलदार आ गया. बाकी हाँ, बिलिंग के क्राइसिस का जो आप कह रहे हैं, एक बार एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था हॉस्पिटल में. तो पेशेंट की बिलिंग हो गई पर उसको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई. वो ना ही एडमिशन के टाइम पे था, ना ही पेशेंट के ट्रीटमेंट के टाइम पे, और एंड में वो आया था. उसके दो रिलेटिव उसको एक्सप्लेन कर रहे थे कि बिलिंग ठीक से हुई है, परंतु वो कुछ साइकेट्रिक मेडिसिन ले रहा था, उसको समझ नहीं आ रहा था, और वो एक कंसल्टेंट के साथ बहुत आर्ग्यू करने लगा. और उस टाइम सर आउट ऑफ टाउन थे और हम लोग ही थे. फिर वो और जोर से बोलने लगा, बहुत एक्टिंग करने लगा, तो दूसरे जो रिसेप्शन पे बैठते वो भी उठ जाते हैं ना देखने के लिए कि आखिर क्या हो रहा है. एंड वो बिल्कुल कैमरा के सामने खड़ा हो गया और चिल्लाने लगा कि गलती की है बिलिंग में, ये वो. एंड दूसरा कंसल्टेंट, तीसरा कंसल्टेंट, एंड उसको ऐसे लगा कि मैं अभी मारा मारी करूं. और वो कैमरा के सामने देखे तो मुझे लगा वो जो होता है ना, थोड़े दिन के बाद व्हाट्सएप पे आता है वायरल वीडियो कि हॉस्पिटल में ये सब हो गया. तो मैं सोच रही अभी क्या करूं, तो मैंने जो रिलेटिव्स होते हैं उनको भी बुला लिया कि मुझे लगा कि कुछ करेंगे ये अभी हॉस्पिटल में. एंड वो बाहर से एक और आदमी को बुला रहा था कि आओ आओ अंदर आओ इनको मारने के लिए ऐसे. तो मैंने बोला बाबा अब क्या, अगर मैं ये माइक हटा दूं ना तो मेरी आवाज जाएगी नहीं, मेरी आवाज इतनी कम है. एंड उस दिन बस बाबा को याद किया और मैं आगे गई और मैंने कहा बस शांत हो जाइए, आप आपको पता नहीं आप कहाँ खड़े हो और मैं पुलिस बुला दूंगी। और इतने में सुपरवाइजर ने पीछे से पुलिस को भी बुला दिया और मुझे नहीं मालूम मेरे में इतनी शक्ति कहाँ से आ गई। मेरा इतना ही बोलना था कि वो बिल्कुल शांत हो गया, उसकी एक्टिंग वैक्टिंग सब रुक गई। मैंने बोला अगर आप अभी बोले ना तो देख लेना पुलिस आ जाएगी और मैं पुलिस को बोलूंगी आपने मेरे साथ मिसबिहेव किया। और तो वो मेरे को ऐसे देखने लगा, मैं बोला बिल्कुल शांति से यहाँ पे बैठ जाओ, आपको पता नहीं आप कौन से हॉस्पिटल में खड़े हो, आपने हमारे पूरे हॉस्पिटल का वाइब्रेशन खराब कर दिया। मतलब मैं तो बिल्कुल उस लेवल पे बात करने लगी उससे। एंड जो आदमी अंदर आया था लड़ाई करने के लिए, मैंने उसको भी कहा प्लीज आप बाहर जाइए, लेकिन अंदर से मोटिव ना हार्म करने का कुछ नहीं था। तो वो बैठ गए, मैंने फिर सुपरवाइजर को कहा कि जाओ जल्दी से पेशेंट के रिलेटिव को नीचे लेके आओ। एंड वो बोल रहे मैं जाता हूँ मैडम, मैं बोला नो यू सिट हियर ओनली। एंड देन सुपरवाइजर लेके आया, नीचे चले गए पेशेंट, बाहर निकल गए और वो तीन लोग थे जो दो रिलेटिव उसको समझा रहे थे वो भी थे, वो शांति से उसको और समझा रहे थे, वो बैठ गए चुपचाप बैठ गए। एंड इतने में पुलिस आ गई। तो पुलिस जैसे होता है ना फिल्म में पुलिस बाद में ही आती है, तो सीन के एंड में ही आई, लेकिन मैंने सीनियर इंस्पेक्टर आया तो मैंने कहा थैंक यू सर सो मच, यू नो यू हैव कम ऑन टाइम, आई अप्रिशिएट यू। तो उन्होंने कहा कहाँ है वो लोग, मैं बोला वो तो चले गए। तो वो जो तीन थे ना वो मुझे देख रहे थे खड़े रह के कि ये क्या बोल रही है, हम तो खड़े हैं यहीं पे। तो उन्होंने कहा देखो देखो, हवलदार को भेजा बाहर, देखो ठीक से देखो वो लोग यहीं होंगे, पकड़ के लाओ। फिर उन्होंने अपना नंबर शेयर किया मुझसे और कहा कि देखो मैडम अगर वापस आते हैं ना तो आप फोन कर देना हमको। तो मैंने कहा थैंक यू सर ये वो। फिर वो चले गए। फिर उन्होंने पूछा किसी को ये कौन है, हु इज शी। देन वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि आप चाहती तो हमको दे देती पुलिस को, बोल देती आप हम क्या करने वाले थे यहाँ पे। तब मैंने उनसे कहा कि हमारा मोटिव ही नहीं था आपको हार्म करने के लिए। तो आई एम नरेटिंग दिस इंसिडेंट क्योंकि डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप में सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है कम्युनिकेशन। कि इतना करने के बाद भी हमने कोई उनसे वर्बल लैंग्वेज में कोई वॉयलेंट नहीं बात की, हम पेशेंट को अंकल ही बोल रहे थे, उनको भाई बोल रहे थे। एंड अंदर से जैसे कि आपने मॉर्निंग में सुना होगा बिफोर आवर वर्ड्स आवर वाइब्रेशंस रीच देम एंड देयर वाज नथिंग टू हार्म देम। एंड फिर वो नमस्ते करके गए। तो मुझे लगता है यहाँ पर जैसे हम बाबा को याद करते हैं तो वो शक्ति भी आ जाती है कि कितने असर्टिवनेस एंड फर्मनेस से बोलना है। जैसे दीदी ने कहा ना कि उनको उनके मस्तक पे आत्मा देखो फिर उनको वाइब्रेशन दो, वो भी किया। हम्बलनेस जैसे मैडम ने कहा, हम्बलनेस वो भी यूज किया। जैसे सर ने डिसीशन पावर के बारे में कहा, डिसीशन लिया कि पुलिस को बुला देंगे, सच में पुलिस आ गई। एंड जैसे सर ने कहा ना कि विहासा में जो वैल्यूज इन हेल्थ केयर हमको सिखाते हैं, तो बंच ऑफ वैल्यूज आप को यूज करना होता है डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप में, जहाँ पे लॉट ऑफ कंपैशन वाज देयर, लॉट ऑफ कंपैशन एंड लॉट ऑफ बिलीव इन गॉड। एंड जैसे कि सर ने कहा कि बींग एन इंस्ट्रूमेंट, हमारा हॉस्पिटल जो है वो हमारा नहीं है परंतु बाबा का है। एंड दैट इज वॉट आई विल कंक्लूड एज डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप। थैंक यू।
लास्ट की नोट स्पीच,
आपको हिना बहन ने जो बताया आपने सुना, आपको किसी ने मुझे आज शाम को पूछा कि आप जैन हैं तो आपके जब जैन आपके रिलेशंस होंगे तो हाउ डू दे फील दैट यू फॉलो द ब्रह्मा कुमारी राजयोग। तो मैं बताना चाहता हूं हिना बहन मुस्लिम है और देखो राजयोग वो कितनी फॉलो करते, वो तो पहले नॉन वेजिटेरियन थी अब तो वेजिटेरियन हो गई, उसका पूरा जीवन बदल गया है। थोड़ा आपके जीवन के बारे में बताओ।
ओम शांति।
आज है सब मोहताज, योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। काम क्रोध मत लोभ मोह वश आज है सब मोहताज योग लगा कर पाप मिटा ले स्वर्ग सजा ले तू आज
Shanti. So my journey started from BACS hospital. मैं वैसे मुंबई से हूँ तो मैंने सबसे पहले BACS hospital डॉक्टर अशोक मेहता सर के अंडर ज्वाइन किया था 2008 में एंड मैं सर MBM के कॉन्फ्रेंस में इस बार इसलिए आई हूँ क्योंकि आप आने वाले थे और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी बट आई थॉट ही टोल्ड मी वन डे दैट आई एम योर गार्डियन My father went in coma in 2008 and unko cardiac arrest hua tha and hypoxic brain injury ho gaya tha and he went into vegetative state and sir ne mujhe bola tha don't worry I'm there I'm your guardian and then for my father they were giving music therapy to kyunki wo Brahma Kumaris ka hospital tha to unhone meditation music chalu kiya unke kaano mein and everything was tried ki kuch nahi ho raha tha to I used to see ke papa ke chehre pe bahut silence ho jata tha shanti aa jati thi to I thought ye log kaun hai aur jaise hi hum BSCS join karte ye log hamara 7 days course karate hai तो मेरा भी ऐसे ही चालू हुआ था लेकिन मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि मुझे आत्मा परमात्मा शब्द आई यूज टू थिंक ये हिंदू है और ये मुझे परिवर्तन करके ही छोड़ेंगे तो मैंने कभी 7 डेज कोर्स किया ही नहीं ना ही आज तक मेरा हुआ तो आई अटेंडेड फर्स्ट डे आत्मा समझाया परमात्मा मुझे नहीं समझ में आ रहा था बट स्टोरीज जो बोलते थे मॉरल स्टोरीज अच्छी लगती थी बट व्हेन माय फादर वेंट इनटू कोमा देयर वाज अ क्वेश्चन इन माय माइंड व्हाई माय फादर ओनली my father was additional प्रोथ नोटरी इन बॉम्बे हाईकोर्ट तो मुझे लगा मेरे पापा एक पॉवर्टी लाइन से एक ऐसे लेवल पर आए और आज जब हमारे कमाने का टाइम है ही इज गोइंग एंड वाई लाइक दिस ये क्यों किया ये क्यों हुआ एंड ही इज सो सिंपथेटिक एंड इतना प्यार करने वाले सबको देने वाले इस सोल के साथ ऐसे क्यों सो देयर वॉज माई एंट्री पॉइंट एंड किसी ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया कर्मा फिलोसफी से एंड कहा कि इस जन्म का नहीं परंतु किसी और जन्म का ये भोग रहे हैं मुस्लिम्स में वी डोंट बिलीव इन पास्ट लाइफ इन क्रिश्चियनिटी एंड मुस्लिम्स बट दैट वॉज माई एंट्री पॉइंट एंड देन आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट ब्रह्मा कुमारीज एंड देन उसके बाद एक दिन दादी गुलजार एडमिट थे BACS हॉस्पिटल में सर ने ऑपरेट किया था एंड कुछ ब्लीडिंग हो रहा था तो मैं दादी के रूम में बार बार जा रही थी मैं वहां पे फ्लोर डॉक्टर थी तो मैं दादी को कह रही थी डोंट वरी हाँ सब ठीक हो जाएगा दादी दादी कह रही है बाबा है ना, और वो मुझे बोल रही थी, दादी ने मेरी आईज में देख के मुझे कहा था उस दिन कि आपको पता नहीं है आज, लेकिन आप एक दिन बहुत बड़ी डॉक्टर बनने वाली हो, आपको पता नहीं है लेकिन आप बहुत बड़ी डॉक्टर बनोगी। तो जो नीलू बहन ये सब खड़े थे, इन्होंने कहा कि आपको तो वरदान मिल गया। एंड एक बार दादी जानकी एडमिट थे तो आई वॉज क्राइंग, एंड अंशुला बहन जी जो थे वहाँ पे अंधेरी पे, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। एंड दादी ने मुझे कहा कि तुम कुछ मत करना, तुम सिर्फ मुरली रोज सुनना, यू हियर मुरली एवरी डे। आई डिडंट नो व्हाट इज मुरली, क्या होती है। एंड दादी और मैं एक दूसरे को देख रहे थे, एंड मुझे लगा कि ओके कोई बहुत बड़ा कुछ बोल रहा है तो ये भी ट्राई करते हैं। तो मैंने नेक्स्ट डे से मुरली अटेंड करने चालू की। जब मैंने मुरली अटेंड की तो मुझे राम सीता कुछ नहीं समझ में आ रहा था। हमारे घर में रामायण महाभारत भी बैंड है, मतलब वो भी नहीं देख सकते आप घर में। परंतु देन आई स्टार्टेड रीडिंग, एपिसोड्स देखना चालू किया, हिंदी समझ में नहीं आती थी, आई स्टार्टेड रीडिंग डिक्शनरीज, एंड देन द जर्नी स्टार्टेड एंड आई एम हियर। तो मुरली वॉज माई बिगिनिंग। तो मैं आप सबको यही कहूंगी कि यहाँ पे आप सब कुछ बहुत सुनेंगे, लेकिन जाने के बाद आप लोग अगर सेंटर पे जाके मुरली सुनेंगे तो फिर आप भी एक दिन यहाँ पर बैठेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। थैंक यू। मैं सभी पैनलिस्ट का धन्यवाद करूंगा, और आज हम डॉक्टर मेहता जी को आप बोलिए। ठीक,
थैंक यू वेरी मच। हेलो, खास कल आपको देंगे बोलने को। क्या है कि हमारे नेक्स्ट स्पीकर आए हैं, डॉक्टर अशोक मेहता हमारे बीच में है। उनको नेशनल अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा मिला है। तो वीड लाइक टू फेलिसिटेट हिम। सब जोरदार तालियां बजाएंगे। मैं बनारसी भाई और डॉक्टर सतीश गुप्ता को स्टेज पर बुलाऊंगा। इट्स एन ऑनर फॉर ब्रह्मा कुमारीज, ही हैज रिसीव्ड दिस अवार्ड ऑफ क्रूसेडर अगेंस्ट कैंसर। इन्होंने इतने साल कैंसर के पेशेंट्स की सेवा की हुई है, तो उनका फेलिसिटेशन ब्रह्मा कुमारीज मेडिकल विंग की तरफ से हो रहा है। सभी जोरदार तालियां बजाएंगे। हम खड़े रह के तालियां बजा सकते हैं सर के लिए? थैंक यू वेरी मच। तालियां बजाते रहे। कितनी आत्माओं की दुआएं इनको मिली हुई है, इनके अगर अनुभव हम सुने तो बहुत समय जाएगा। तो हम सबके लिए एक रोल मॉडल के रूप में है, माइंड बॉडी मेडिसिन का जीता जागता उदाहरण हमारे लिए बहुत बड़े रोल मॉडल है। तो यस, और बाकी पैनलिस्ट का भी सर खड़े रहेंगे। हाँ, बाकी पैनलिस्ट का भी बनारसी भाई सत्कार कर रहे हैं। तालियां बजाते रहेंगे, बहुत अच्छा है। ये एक एक का अगर हम अनुभव सुनने चाहे तो समय कम पड़ेगा, इतना अनुभव इन लोगों के पास है। समय के अभाव से हमने केवल एक घंटे का सेशन रखा था। इनके बहुत प्रैक्टिकल अनुभव है। डॉक्टर रे भट्ट लंदन से हमारे बीच में आए हैं। ये एक बार बोलना चालू करते हैं तो रुकते नहीं है, क्योंकि इतने खजाने इनके पास है। ऑल ओवर वर्ल्ड दादी जानकी के साथ काफी समय, हमारे अनिता बहन जी ना परफेक्ट एग्जाम्पल उन्होंने जो दिया, योगी आत्मा क्या कर सकती है। डॉक्टर उषा किरण, फर्स्ट पर्सन इन मेडिकल विंग जिन्होंने स्टडी किया टेंशन हेडेक के ऊपर, राजयोगा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली। इनके भी बहुत अनुभव है, फाउंडिंग मेंबर है मेडिकल विंग ऑफ ब्रह्मा कुमारीज के। डॉक्टर हीना, इनके बहुत सारे अनुभव है, थोड़ा शॉर्ट में इन्होंने सुनाया। हमारे वियासा के फैसिलिटेटर भी है। तो सभी ये बाबा के ज्वेल से। डॉक्टर अनिल भतीजा भी प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एनाटॉमी के हैं, जो बहुत अच्छा अभी उन्होंने विहासा का प्रोग्राम अपने मेडिकल कॉलेज में रखा हुआ है। गुजरात में पाटन में रहते हैं, उनको भी हम तालियों से स्वागत करेंगे। वेरी गुड। एक फोटो,
I invite Dr. Bharti to conduct the next session as a coordinator. Please come on the desk.